एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज के ज्ञान गोष्ठी में हम 20वीं सदी के शायद सबसे जाने पहचाने चेहरे और दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन की दुनिया में उतर रहे हैं।
आइंस्टाइन, हाँ, एक ऐसा नाम जो मतलब सिर्फ विज्ञान का ही नहीं बल्कि जीनियस का, जिज्ञासा का पर्याय बन गया है। लेकिन उनकी कहानी, उनका असर वो E=MC² या उनके बिखरे बालों वाली तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहरा है।
बिल्कुल, आज हम यही देखने वाले हैं, उनका जीवन कैसा था, उनके वो क्रांतिकारी विचार क्या थे और कैसे उन्होंने सिर्फ भौतिकी ही नहीं बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, उनकी सोच पर और उनकी विरासत पर रोशनी डालते हैं।
तो हमारा मकसद यही है कि आइंस्टाइन के विचारों की सार को पकड़ें और समझें कि भाई वो आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो कहाँ से शुरू करें, शायद उस जमाने से जिसने आइंस्टाइन को बनाया। कैसा था वो दौर?
हाँ बिल्कुल, देखिए आइंस्टाइन का जीवन 1879-1955 एक कहना चाहिए बड़े तूफानी दौर से गुजरा। एक तरफ विज्ञान में जबरदस्त क्रांतियां हो रही थी और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो दो विश्वयुद्ध, बड़ी सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल इनसे गुजर रही थी।
और विज्ञान में क्या हो रहा था? मतलब न्यूटन के नियम तो स्थापित थे ना?
थे, बिल्कुल थे, सदियों से थे। न्यूटन ने ब्रह्मांड को एक परफेक्ट घड़ी की तरह चलने वाली मशीन बताया था। लेकिन अब आइंस्टाइन के आने से ठीक पहले कुछ ऐसी पहेलियां सामने आ रही थीं, कुछ ऐसे प्रयोगों के नतीजे आ रहे थे जिनके सामने न्यूटन के नियम कह सकते हैं थोड़े कमजोर पड़ रहे थे।
अच्छा, जैसे?
मैंने कुछ अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रोफी जैसा कुछ पढ़ा था। ये क्या था जिसने स्थापित विज्ञान को हिला दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, ये अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रोफी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो क्लासिकल भौतिकी थी उसके हिसाब से। अगर कोई गर्म चीज़ है, मान लीजिए कोयला जल रहा है, तो उससे जो ऊर्जा निकलनी चाहिए वो हाई फ्रीक्वेंसी पर, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों की तरफ, वो अनंत होनी चाहिए थी।
अनंत? ये तो हो नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता, ये साफ तौर पे गलत था। इससे पता चल रहा था कि ऊर्जा को लेकर हमारी समझ में कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी है। और ऐसा ही एक और बड़ा प्रयोग था, माइकलसन मॉर्ले प्रयोग।
हाँ, ईथर वाला।
वही, वो काल्पनिक माध्यम जिसमें माना जाता था कि प्रकाश तरंगे चलती हैं। उस प्रयोग से ईथर का कोई सबूत ही नहीं मिला। तो ये सब नतीजे बता रहे थे कि भाई भौतिकी की जो नींव है वो शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम समझ रहे थे। कुछ नया सोचने का वक्त आ गया था।
हाँ, यानी एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी किसी बड़े बदलाव के लिए। और इस माहौल में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, दार्शनिक, दूसरे विचारक भी थे।
अरे बिल्कुल, वो दौर बौद्धिक रूप से मतलब बहुत ही उथल पुथल वाला, बहुत उर्वर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन समाज को बदल रहा था, फिलॉसफी में जो परम सत्य की बातें थीं उन पर सवाल उठ रहे थे। एक तरफ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी की नींव रख रहे थे, नील्स बोर एटम को समझने में लगे थे।
फ्रॉइड भी तो थे शायद, मन की गहराइयों को समझने वाले।
हाँ, सिगमंड फ्रॉइड थे, बर्ट्रेंड रसल थे और आइंस्टीन इन सबके बीच थे। वो अर्नस्ट मार्क, डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों से भी प्रभावित थे। मार्क और ह्यूम ने उन्हें सिखाया कि स्पेस, टाइम, ये सब जो मानकर चलते हैं, इन पर भी सवाल उठाना जरूरी है। फैराडे और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर जो काम था उससे भी वो बहुत प्रेरित हुए।
और उनकी अपनी पृष्ठभूमि का भी असर रहा होगा, उनका यहूदी होना।
हाँ, हालांकि उनका परिवार ज्यादातर सेक्युलर था, लेकिन खासकर जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ तब उनकी यहूदी पहचान उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो अपने समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल से भी गहरे जुड़े हुए थे।
तो ऐसे माहौल में आइंस्टाइन का बचपन, उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, वो कैसी रही? क्या वो पैदाइशी जीनियस टाइप थे?
उनका जन्म हुआ 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में। परिवार मध्यम वर्गीय था, जैसे मैंने कहा, सोच में सेक्युलर। बचपन से ही वो जिज्ञासु बहुत थे, गणित और भौतिकी में खास रुचि थी। कंपास की सुई हमेशा उत्तर क्यों दिखाती है, ऐसे सवाल उन्हें बचपन में ही हैरान करते थे।
लेकिन स्कूलों में कैसा था उनका अनुभव?
सुना है वो थोड़े बागी किस्म के थे।
हाँ, ये बात सही है, स्कूलों का जो रटने वाला सिस्टम था, जो बहुत ज्यादा अनुशासन पर जोर देता था, वो उन्हें पसंद नहीं था। उनका टकराव होता था टीचर्स से। लेकिन ये जो कहानी है ना कि वो गणित में कमजोर थे।
हाँ, ये तो बहुत सुना है।
ये बिल्कुल मिथक है, ये असल में स्विस ग्रेडिंग सिस्टम की गलतफहमी से फैली बात है। वो गणित में शुरू से ही बहुत अच्छे थे, बल्कि असाधारण थे।
अच्छा, ये तो कमाल की बात है। तो फिर उनकी हायर एजुकेशन कहाँ हुई? उन्होंने ज्यूरिख के बहुत ही प्रतिष्ठित स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक, जिसे ETH कहते हैं, वहां से गणित और भौतिकी में ग्रेजुएशन किया सन 1900 में। लेकिन डिग्री मिलने के बाद उन्हें कोई अच्छी अकादमिक नौकरी मिलने में काफी मुश्किल हुई।
क्यों? इतने काबिल छात्र के लिए मुश्किल क्यों?
शायद उनका वही थोड़ा स्वतंत्र रवैया, प्रोफेसरों की कुछ बातों से असहमत हो जाना, ये सब कारण रहे होंगे। उन्हें शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ा।
तो फिर उन्होंने क्या किया? पेटेंट ऑफिस वाली कहानी यहीं से शुरू होती है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक मोड़ था। 1902 से 1909 तक उन्होंने बर्न, स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की, थर्ड क्लास क्लर्क।
पेटेंट क्लर्क, ये सुनने में तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। इससे उनके महान विचारों को कैसे मदद मिली?
देखिए, ये नौकरी शायद ऊपर से बोरिंग लगे, लेकिन आइंस्टाइन के लिए ये एक तरह का वरदान साबित हुई। काम ये था कि दूसरों के जो नए नए आविष्कार थे, उनके पेटेंट आवेदनों को जांचना, उनका विश्लेषण करना।
अच्छा, तो इससे उन्हें सोचने का टाइम मिला?
हाँ, यही बात है। काम बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत वाला नहीं था। उन्हें भौतिकी के जो मूलभूत सवाल थे, स्पेस, टाइम, लाइट, ग्रेविटी, इन पर गहराई से सोचने का खूब समय और कह सकते हैं दिमागी आजादी मिली। कोई अकादमिक दबाव नहीं था, कोई पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं, बस वो और उनके विचार। और यहीं इसी पेटेंट ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने उन क्रांतिकारी विचारों पर काम किया जिन्होंने दुनिया बदल दी।
और यहीं से शुरुआत हुई उनके सबसे बड़े आइडिया की, सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी। ये क्या चीज है आसान भाषा में?
रिलेटिविटी, हाँ, ये उनका सबसे सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए, न्यूटन क्या मानते थे कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये दोनों एकदम फिक्स्ड हैं, निरपेक्ष हैं, सबके लिए एक जैसे। आप कहीं भी हो, कितनी भी तेजी से चल रहे हो, आपके लिए एक सेकंड उतना ही लंबा होगा जितना मेरे लिए, और एक मीटर उतना ही लंबा।
हाँ, ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता है।
लगता है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये कॉमन सेंस गलत है। उन्होंने दिखाया कि स्पेस और टाइम असल में निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चार आयामी चादर की तरह, जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम।
स्पेस टाइम
यानी स्पेस के तीन डायमेंशन और टाइम का एक, मिलकर एक चीज बनाते हैं।
बिल्कुल।
और ये स्पेस टाइम स्थिर नहीं है, ये लचीला है, ये बदल सकता है। यही उनकी स्पेशल रिलेटिविटी 1905 का मूल विचार था। बाद में जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि ग्रेविटी भी इसी स्पेस टाइम के मुड़ने या वक्र होने का नतीजा है।
और उनका ये भी मानना था कि विज्ञान सिर्फ गणित नहीं है, ये असलियत को दिखाता है, जिसे वैज्ञानिक यथार्थवाद कहते हैं।
हाँ, उनका ये विश्वास बहुत गहरा था। वो मानते थे कि भौतिकी के जो नियम हैं, जो समीकरण हैं, वो सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए मॉडल नहीं हैं, बल्कि वो प्रकृति की जो वास्तविक ऑब्जेक्टिव सच्चाई है उसे दर्शाते हैं। भले ही हम उसे पूरी तरह ना समझ पाए हों, लेकिन वो सच्चाई वहां है और विज्ञान का काम उसे खोजना है।
और इसी यथार्थवाद, इसी नियमों में विश्वास के कारण वो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ अजीब बातों से सहमत नहीं हो पाए। उनका वो मशहूर कोट है, ईश्वर पासा नहीं खेलते।
बिल्कुल सही। आइंस्टीन का जो नजरिया था वो काफी हद तक नियतिवादी, डिटर्मिनिस्टिक था। मतलब वो मानते थे कि हर घटना का एक निश्चित कारण होता है, ब्रह्मांड कुछ तय नियमों से चलता है, उसमें संयोग या रैंडमनेस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
और क्वांटम मैकेनिक्स तो संयोग की बात करती है, प्रोबेबिलिटी की।
हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि बहुत छोटे स्तर पर, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन के लेवल पर, चीजें निश्चित नहीं होती बल्कि संभाव्य होती हैं। आप ये नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है और किस रफ्तार से जा रहा है, आप सिर्फ संभावना बता सकते हैं। ये बात आइंस्टाइन को बहुत, कह सकते हैं, परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि ये थ्योरी अधूरी है, ईश्वर पासा नहीं खेलते। कहने का उनका मतलब यही था कि प्रकृति के मूल में ये रैंडमनेस नहीं हो सकती, कोई गहरा नियम होगा जो हमें अभी पता नहीं है।
ये कितनी दिलचस्प बात है कि क्वांटम थ्योरी की नींव रखने में उनका खुद का भी बड़ा हाथ था, जैसे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला काम, लेकिन फिर भी वो उसकी अंतिम व्याख्या से सहमत नहीं थे।
हाँ, यही विडंबना है। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो कमरा मिला वो उन्हें पूरी तरह पसंद नहीं आया। विज्ञान के अलावा उन्होंने नैतिक मानवतावाद, एथिकल ह्यूमनिज्म पर भी बहुत जोर दिया।
वो क्या था?
मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी, शांति, अहिंसा, मानव जीवन की गरिमा, इन मूल्यों में उनका गहरा विश्वास था। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक गहरे मानवतावादी विचारक भी थे। और उनकी एक और मशहूर बात है जो उनकी सोच को दर्शाती है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसका क्या मतलब था उनके लिए? ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात थी?
नहीं नहीं, ये उनके काम करने का तरीका था। देखिए, ज्ञान हमें बताता है कि क्या चीजें हमें पता हैं, क्या स्थापित हैं, लेकिन कल्पना वो हमें उन संभावनाओं तक ले जाती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। आइंस्टीन विचार प्रयोगों के मास्टर थे। विचार प्रयोग मतलब दिमाग में ही एक्सपेरिमेंट करना।
कुल वो अपने दिमाग में ही जटिल स्थितियां सोचते थे, जैसे अगर मैं लाइट की बीम पर बैठकर सफर करूं तो क्या होगा, या अगर मैं एक बंद लिफ्ट में गिर रहा हूं तो मुझे अपना वजन महसूस होगा क्या। ऐसे सवालों से, ऐसी दिमागी कसरतों से उन्होंने रिलेटिविटी जैसे गहरे सिद्धांत निकाले। ये दिखाता है कि असली वैज्ञानिक खोज सिर्फ लैब में नहीं होती, वो कल्पना की उड़ान से भी होती है।
वाह, और फिर उनकी सबसे आइकॉनिक इक्वेशन E=mc2।
हाँ, दुनिया की शायद सबसे मशहूर समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये छोटी सी दिखने वाली इक्वेशन एक बहुत बड़ी बात कहती है कि द्रव्यमान, मास और ऊर्जा, एनर्जी, असल में एक ही चीज के दो रूप हैं।
एक ही सिक्के के दो पहलू।
बिल्कुल, और इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। बहुत थोड़े से द्रव्यमान में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा छिपी होती है, क्योंकि सी स्क्वायर यानी प्रकाश की गति का वर्ग एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी सिद्धांत ने बाद में एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता खोला।
ये तो सचमुच एक दोधारी तलवार जैसा रहा होगा उनके लिए। चलिए अब उनके कुछ खास कामों की बात करते हैं। साल 1905 को तो चमत्कार वर्ष या एनिस मिराबिलिस कहते हैं।
हाँ, एनिस मिराबिलिस, वो एक साल गजब का था। वो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे और उसी एक साल में उन्होंने 4 ऐसे पेपर पब्लिश किए जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की पूरी दिशा बदल दी। सोचिए,
4 पेपर्स, कौन कौन से थे वो?
पहला था विशेष सापेक्षता पर, स्पेशल रिलेटिविटी पर, जिसने स्पेस, टाइम, मास और एनर्जी के बारे में हमारी समझ को झकझोर दिया और E=mc2 का आइडिया दिया। दूसरा था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इसमें उन्होंने समझाया कि प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी फोटोन की तरह भी व्यवहार करता है।
और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, है ना?
जी हाँ, 1921 का नोबेल प्राइज उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, रिलेटिविटी के लिए नहीं। रिलेटिविटी उस समय भी काफी विवादास्पद थी। तीसरा पेपर था ब्राउनियन गति पर।
वो क्या था?
पानी में या हवा में जो छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं वो अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े चलते हैं। आइंस्टीन ने गणितीय रूप से समझाया कि ये गति पानी या हवा के अदृश्य अणुओं की टक्करों की वजह से होती है। इससे एटम और मॉलिक्यूल के अस्तित्व का एक बहुत मजबूत सबूत मिला। और चौथा पेपर था द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता पर, यानी E=mc2 का और विस्तार।
एक ही साल में ये सब, वो भी पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए, ये तो दिमाग चकरा देता है। और फिर आया उनको मास्टरपीस सामान्य सापेक्षता।
हाँ, लगभग 10 साल बाद 1915-16 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। ये स्पेशल रिलेटिविटी का विस्तार था और इसने ग्रेविटी को बिल्कुल नए तरीके से समझाया।
न्यूटन ने तो कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक खिंचाव है।
हाँ, न्यूटन के लिए ग्रेविटी दो चीजों के बीच एक अनदेखा खिंचाव था। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये असल में स्पेस टाइम के ज्यामिति का, उसके आकार का नतीजा है। भारी चीजें जैसे सूरज या पृथ्वी अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है, उसमें एक वक्रता पैदा कर देती है।
जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रखने से चादर बीच में धस जाती है।
बिल्कुल सही उदाहरण है। और फिर जो दूसरी चीजें जैसे कोई ग्रह या प्रकाश की किरण, वो उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं और हमें लगता है कि वो भारी चीज की तरफ खींच रहे हैं। तो ग्रेविटी खिंचाव नहीं बल्कि स्पेस टाइम के मुड़े हुए रास्ते पर चलना है।
ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। और इसकी पुष्टि भी हुई थी, है ना, वो सूर्य ग्रहण वाली कहानी।
हाँ, वो कहानी तो आइंस्टीन को रातों रात सेलिब्रिटी बना गई। 1919 में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था। ब्रिटिश खगोलशास्त्री सर आर्थर एडिंगटन की टीम ने 2 अलग अलग जगहों से तस्वीरें ली। उन्होंने देखा कि सूर्य के पास से गुजरते हुए दूर के तारों की रोशनी ठीक उतनी ही मुड़ी जितनी आइंस्टीन की थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी। ये एक सनसनीखेज पुष्टि थी, अखबारों में हेडलाइन छपी, विज्ञान में क्रांति, और आइंस्टीन दुनिया के पहले साइंस सुपरस्टार बन गए।
कमाल है। अच्छा, अगर हम उनकी तुलना न्यूटन से करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया?
गलत साबित किया ये कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। आइंस्टीन ने न्यूटन के नियमों की लिमिट्स दिखाई। देखिए, न्यूटन के जो नियम हैं ग्रेविटी के, गति के, वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए धीमी रफ्तार, सामान्य गुरुत्वाकर्षण आज भी परफेक्टली काम करते हैं। हम रॉकेट चांद पर न्यूटन के नियमों से ही भेजते हैं।
अच्छा।
हाँ, लेकिन जब चीजें बहुत तेज चलने लगती हैं, मतलब प्रकाश की गति के करीब, या फिर जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तब न्यूटन के नियम काम नहीं करते। वहां हमें आइंस्टीन की रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो आइंस्टीन का काम न्यूटन के काम का खंडन नहीं, बल्कि उसका विस्तार था, उसे और ज्यादा व्यापक बनाना था।
समझ गई। और नील्स बोर के साथ उनकी जो बहसें थी क्वांटम मैकेनिक्स पर, वो तो बहुत मशहूर है, उनमें क्या था मुख्य मतभेद?
वो बहसें मतलब विज्ञान के इतिहास की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बहसों में से हैं। मुद्दा वही था, ब्रह्मांड की असलियत क्या है। बोर और उनके साथी जैसे हाइजेनबर्ग, वो क्वांटम दुनिया की जो अजीब, अनिश्चित, अनसर्टन और संभाव्य प्रोबेबिलिस्टिक रीचर थी, उसे स्वीकार कर चुके थे। उनका कहना था कि इस लेवल पर चीजें ऐसी ही हैं, आप एक कण की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ठीक ठीक जान ही नहीं सकते, और हमारा देखना ही नतीजे को बदल देता है।
और आइंस्टीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, उन्हें लगता था कि अनिश्चितता असलियत की नहीं बल्कि हमारे ज्ञान की कमी की निशानी है। वो कहते थे, क्या आपको सच में लगता है कि चांद तभी वहां होता है जब आप उसे देख रहे होते हैं? वो मानते थे कि कोई गहरी छिपी हुई सच्चाई, हिडन वेरिएबल जरूर होगी, जो इस रैंडमनेस के पीछे काम कर रही है, जिसे हम अभी खोज नहीं पाए हैं। ये असल में दो नजरियों की टक्कर थी, यथार्थवाद बनाम संभाव्यता, नियतिवाद बनाम अनिश्चितता।
तो आज आइंस्टीन की विरासत क्या है, क्यों वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं?
अरे, उनकी विरासत तो हर जगह है। मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की तो पूरी नींव ही उनके काम पर टिकी है। ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, ग्रेविटेशनल वेव्स, यूनिवर्स का फैलना, ये सब आइंस्टाइन के विचारों से जुड़े हैं।
जीपीएस में भी उनका काम आता है।
हाँ, जो जीपीएस हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी सटीक इसलिए है क्योंकि वो आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों के असर को कैलकुलेशन में शामिल करता है। अगर वो ना करें तो कुछ ही मिनटों में जीपीएस गलत लोकेशन बताने लगेगा।
सच में?
हाँ, और हाल ही में जो ग्रेविटेशनल वेव्स खोजी गई या ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर ली गई, ये सब क्या है? ये आइंस्टाइन के 100 साल पुराने आइडियाज की सीधी सीधी पुष्टि हैं। उनका काम आज भी रिसर्च को दिशा दे रहा है।
और विज्ञान के बाहर भी तो उनका बड़ा असर रहा है।
बहुत गहरा। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पब्लिक फिगर थे, एक आवाज थे। उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई, वो शांति के बड़े पैरोकार थे। हालांकि यहाँ एक पेंच है।
क्या?
वो आजीवन शांतिवादी थे, लेकिन 1939 में जब उन्हें लगा कि नाजी जर्मनी एटम बम बना सकता है, तो उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर आगाह किया और अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम की जरूरत बताई। इसी से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बाद में उन्हें इसका बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, खासकर हिरोशिमा और नागासाकी के बाद।
ये तो बड़ी दुविधा रही होगी उनके लिए।
वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, वर्ल्ड गवर्नमेंट तक की बातें करते थे। वो एक कह सकते हैं जागरूक वैश्विक नागरिक थे। उनकी जो जीनियस वाली छवि है, वो आज भी लाखों लोगों को, बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
उनके कुछ कोट्स भी बहुत फेमस है। हमने कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ईश्वर पासा नहीं खेलते की बात की। एक और है, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना बंद ना करें, जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है।
हाँ, ये शायद उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ है। ये 1955 के एक इंटरव्यू से है, उनकी मृत्यु से कुछ ही समय पहले। उनके लिए विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका जवाब मिल गया और बात खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, एक यात्रा थी। और इस यात्रा को चलाने वाली शक्ति क्या है? जिज्ञासा। सवाल पूछते रहना, क्यों, कैसे, यही है जो हमें आगे ले जाता है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और भी मजेदार किस्से हैं, जैसे उन्हें वायलिन बजाने का बहुत शौक था।
हाँ, बहुत। वो जीवन भर वायलिन बजाते रहे। कहते थे कि संगीत उनकी सोचने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। मोजार्ट और बाख उनके पसंदीदा थे। ये दिखाता है कि कैसे आर्ट और साइंस उनके लिए जुड़े हुए थे।
और उन्हें इसराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी मिला था।
हाँ, 1952 में इसराइल के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करते आए हैं, लोगों से, मानवीय मामलों से,
राजनीति से डील करने की ना तो उनमें काबिलियत है ना अनुभव। ये उनकी ईमानदारी और अपनी सीमाओं की समझ दिखाता है।
उनके अपने काम में भी कुछ दिलचस्प मोड़ थे, जैसे वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली बात, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूल कहा था।
हाँ हाँ, वो बड़ी मज़ेदार कहानी है। जब उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस बनाई तो नतीजे दिखा रहे थे कि यूनिवर्स या तो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, लेकिन उस समय सब मानते थे कि यूनिवर्स स्थिर है। तो अपनी इक्वेशंस को सोच के साथ फिट करने के लिए उन्होंने उसमें गणितीय टर्म, एक कांस्टेंट जोड़ दिया,
जबरदस्ती फिट करने के लिए,
हाँ कह सकते हैं। बाद में जब एडविन हबल ने साबित कर दिया कि यूनिवर्स असल में फैल रहा है, तो आइंस्टीन ने कहा कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डालना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन मजा देखिए, आज की कॉस्मोलॉजी में वही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फिर से लौट आया है।
अरे कैसे?
अब माना जाता है कि ये शायद डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो रहस्यमयी चीज जो यूनिवर्स के फैलाव को तेज कर रही है। तो जो उनकी भूल थी वो शायद भूल थी ही नहीं।
ये तो गजब है। और ऐसा ही कुछ ईपीआर पैराडॉक्स के साथ भी हुआ।
बिल्कुल, उन्होंने इसे अपने दो साथियों पोडोल्स्की और रोजिन के साथ मिलकर तैयार किया था, ये दिखाने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है। इसमें उन्होंने उलझे हुए कणों या एंटेंगल पार्टिकल्स के एक बड़े अजीब व्यवहार की बात की थी जो उन्हें असंभव लगता था।
लेकिन
हुआ ये कि बाद के प्रयोगों ने दिखाया कि ये उलझाव सच में होता है, और आज वही ईपीआर पैराडॉक्स क्वांटम इन्फॉर्मेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फील्ड्स की नींव बन गया है। तो जो उन्होंने क्वांटम की कमी दिखाने के लिए बनाया, वो क्वांटम की सबसे अजीब और शक्तिशाली प्रॉपर्टीज में से एक को समझने का आधार बन गया।
वाह, नियति का खेल देखिए। और उनकी जीवन का अंत भी बड़ा दार्शनिक सा था।
हाँ, 1955 में उनकी एओर्टिक एन्यूरिज्म, पेट की धमनी की सूजन, फट गई। डॉक्टरों ने सर्जरी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे जाना है मैं चला जाऊंगा, कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा खींचना बिस्वाद है। उनके जो आखिरी शब्द थे वो जर्मन में थे, और पास में जो नर्स थी वो जर्मन नहीं समझती थी, तो उनके आखिरी शब्द हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए।
आइंस्टीन की कहानी सच में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। जब हम उनके वैज्ञानिक काम को देखते हैं, वो एकीकरण की तलाश, प्रकृति के सारे नियमों को एक साथ लाने की कोशिश, और फिर उनके मानवीय सरोकारों को देखते हैं, शांति, न्याय, मानवता की एकता की बातें, तो ऐसा लगता है जैसे इन दोनों में कोई गहरा कनेक्शन है।
ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। वो भौतिकी में एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तलाश में थे ताउम्र, जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक कर सकें। उन्हें लगता था कि प्रकृति के मूल में एकता होनी चाहिए, और शायद यही सोच उनके सामाजिक विचारों में भी झलकती थी, मानवता की एकता, युद्ध की निरर्थकता।
हाँ, शायद ये सोचने लायक बात है कि ब्रह्मांड को समझने की जो कोशिश है और उसमें इंसान की स्थिति को बेहतर बनाने की जो कोशिश है, क्या ये दोनों कोशिशें कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?
बिल्कुल, और शायद आइंस्टीन के जीवन से हमें यही सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उनकी वैज्ञानिक क्रांति हमें सिखाती है कि जो चीजें हम मानकर चलते हैं, जो स्थापित सत्य लगते हैं, जैसे निरपेक्ष स्पेस और टाइम, उन पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। और उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उनकी विरासत सिर्फ समीकरणों में नहीं, बल्कि लगातार सवाल पूछने, जिज्ञासा बनाए रखने और बेहतर दुनिया के लिए कोशिश करते रहने की प्रेरणा में भी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।